अपने दोषों का सार ये ब्रह्म है। आत्मा का एकत्व स्वरूप अद्वितीय और सद्वस्तु है। अर्थात ब्रह्मा ब्रह्म और जीव जब मिल जाते हैं आत्मा तो एक स्वरूप बन जाता है, जल में जल मिल गया, एक हो गया, इसी का नाम है मुक्ति। तो ये अखंडानंद जी इसका अर्थ कर रहे हैं, ये समस्त उपनिषदों का सार ब्रह्म है और आत्मा उसी में मिल जाने पर जो एक रूप हो जाता है वही अद्वितीय वस्तु है। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, जो जीव परमा ब्रह्म में मिल जाए। इसके निर्माण का प्रयोजन है केवल एकमात्र कैवल्य मोक्ष, स्पष्ट कर दिया। यहाँ हमने इसी विषय पर उनको दिया था, ये इस पर अपने अपने विचारों को प्रकट करें। जितने भी विद्वान आए थे उसमें जो प्रधान प्रधान विद्वान, उन्होंने शास्त्रों का विवेचन ठीक रूप में पढ़ ली करके आए और बतलाया है। जिसमें से दो तीन आदमी ने उसका सार बतलाया, बहुत ही सुंदर बतलाया। मैं संक्षेप में मैं कुछ बतला रहा। अभी जो बतलाया वो भागवत का तात्पर्य नहीं, वो गलत है। अब मैं हमारे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उनके विचारों से अब मैं बतला रहा हूँ। उस सभा में ये भी आया था प्रसंग, वृंदावन से भट्ट जी आए थे, अच्युतलाल भट्ट जी, उन्होंने इस पर विशद रूप में प्रकाश डाला। तो इतना लेंदी कुछ हो गया जो साधारण लोग शायद समझे कि नहीं, तीन चार बार रिपीटेशन करने लग गए। खैर, जैसा भी हमारे पक्ष को, वैष्णवों के पक्ष को, गौड़ीय वैष्णवों को पक्ष को उन्होंने दिखलाया, प्रदर्शित किया, और लोग भी धीरे धीरे उसी पर बोल रहे थे। वासुदेव कृष्ण जी भी कुछ बोले, बहुत से टीकाओं का सार लेकर के बोले। मनोहर लाल शास्त्री जी बहुत अच्छे बोले, बसंत लाल जी भी बहुत अच्छे बोले, और एक वृंदावन के पंडित थे जो भागवत पढ़ाते हैं, नहीं उधर में बैठे, क्या नाम, मुरारी या कुछ, उन्होंने भी अच्छी तरह से बतलाया। इसका बतलाने में तो तीन चार दिन लग जाएगा, संक्षेप में थोड़ा सा बतला देते हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी जी चले गए, भागवत की कथा सात दिन की हुई, चले गए। परीक्षित महाराज जी ने सात दिन के बाद में आत्मा को इसमें से निकाल दिया, निकाल करके ब्रह्मांड ले गए, ब्रह्मांड में से राधा कृष्ण के चरणों में ले गए, उनकी सदगति हो गई। सूखा जो शरीर रह गया उसको सांप ने डसा, अथवा माया का जो उनका जो शरीर बच गया था उसको सांप ने डसा, वो जल गया। इस सब की कथाओं को सुत गोस्वामी जी सोनकादि ऋषियों को बतला रहे हैं। उस लीला को जो अभी सुखदेव उसने बतलाया था उसको अब ये बतला रहे हैं सोनकादि ऋषियों, वही उपसंहार में अंतिम में ये बतला रहे हैं। किसको बतला रहे हैं? ऋषियों को बतला रहे हैं। देखो, श्रीमद् भागवत जो है समस्त वेदांतों का सार है, उपनिषदों का सार है, महाभारत का अर्थ है, गायत्री का भाष्य है। ये सब बतलाने के बाद में कहते देखो मैं सब सार कुछ संकलन करके तुमको बतला रहा हूं। आदि मध्य अवसानेषु, इस भागवत के आदि में, मध्य में और अवसानेषु अंत में वैराग्य आख्यान से युक्त, जिसे वैराग्य उत्पन्न हो, देवहूति कपिल देव का संवाद, भवाटवी संवाद, पुरंजन का उपाख्यान, ये सब सुनने से जरूर ही वैराग्य उत्पन्न होगा। उसमें एक बकरा और बकरी की भी, दो बकरियों और एक बकरे का भी उपाख्यान बताया, दक्ष प्रजापति और शंकर के बीच में विवाद और दक्ष प्रजापति का विनाश, और फिर भगवान की कृपा से उनका ये गले में लग गया मुन, ये बकरे का ये लगा दिया। जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जो स्त्रियां भगवान का भजन नहीं करती, ये बकरा और बकरी के ही योग्य। पुत्र उत्पन्न करना, खाना पीना मौज करना, बस यही उनके जीवन का सार है। मनुष्य नहीं है, मनुष्य होने से, बुद्धि होने से भगवान का भजन करेगा। इसलिए ये सब वैराग्य अभियान युक्त कथा कहा। संयुतम किंतु हरि लीला कथा प्राता, भगवान की जो लीला कथाएं हैं, विशेष करके दसवें स्कंद में जो लीला कथाएं हैं, इसमें वैराग्य की कोई बात नहीं है, कहीं वैराग्य का कोई भी उपदेश नहीं। विशुद्ध रूप में राधा कृष्ण की और फिर राधा कृष्ण की ये सब लीलाएं। वो कैसी लीलाएं हैं? प्राता माने समूह, जन्म से लेकर के रास पंचाध्यायी तक, उद्धव संवाद तक, ये मधुर लीलाएं जो हैं अमृत है। लीला कथाएं एव अमृतम, लीला कथाएं ही अमृत है। अरे तुम्हारा तो आगे बढ़ो ना। उसमें रस साधन कौन करता है? भक्त लोग। कैसे भक्त लोग रस साधन करते हैं? रसिक और भावुक हो, ये अपने बड़े प्रिय हैं, और उससे आनंदित कौन हो रहे हैं यही बतला रहे हैं। सत्सु, सत व्यक्ति माने भगवान के जो प्रिय, कहूं भी बोलता है उनको ऐसा मालूम नहीं बोल रहा है, साउंड नहीं है। तो उनकी लीला कथाएं हैं, ये अमृत है। उस अमृत में ये भक्त लोग उसका पान करते हैं और उसे परम आनंदित हो जाते हैं। लीला कथा ये जो भागवत है उसका प्रयोजन क्या है? वो अमृत जो है, वो लीला कथाएं अमृत है। ये बस बोलता नहीं है क्या? बहुत जोर लगता है। अब ठीक है। तो ये लीला कथा जो है ये अमृत है, किंतु अमृत पान करने से क्या होता है? अमृत पान करने से, अमृत आदमी किस लिए पान करता है? आनंद के लिए ना? यदि इस अमृत को पान करने से आनंद नहीं होता तो कोई पान करता? कोई नहीं पान। इसलिए आनंद क्या हुआ? ये अनुभव हुआ। ये अनुभव के कारण ही समझा जाएगा कि इसमें आनंद हो रहा है, नहीं तो समझा नहीं जाएगा। इसलिए ये दो प्रयोजन हुआ, लीला कथा और उसके अनुभव। इन लीला कथाओं को परिवेशन कौन कर रहा है, बांट कौन रहा है? भागवत स्वयं। किस रूप में? मोहिनी रूप। ये कौन आया? सत्सुरम। सत्सुरम, सुरम माने जो सत व्यक्ति हैं, जो भक्त लोग हैं, वही सुर माने देवता है। एक रूपक आ गया अपने आप। रूपक कौन आया? समुद्र मंथन के समय में समुद्र से अमृत निकला, देवता लोग उछल रहे हैं जो हमको मिले, और असुर लोग सोच रहे हैं कि हमको मिले। दोनों में विवाद होने लगा, लड़ाई की नौबत आई। इतने में भगवान वहां से प्रकट हुए। किस रूप में? अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप में। उनको देखते ही पैरों में पायल, घुंघरू इत्यादि, अत्यंत कोयल सी बोली और परम सुंदरी देख करके देवता लोग और दानव दोनों मोहित हो गए। उन्होंने कलश उठा लिया, झट अमृत का हाथों में कलश ले लिया, बड़ी भंगी के साथ। उन्होंने असुरों को कहा जे बैठ जाओ और देवताओं को कहा जे तुम लोग इधर बैठ जाओ। ऐसे वो लोग उसके मोहित हो गए थे, जो जो कर रहे इशारे पर वो करने के लिए तैयार हैं। बस इशारे पर नचा करके दोनों को दोनों तरफ में बैठा दिया। ये मोहिनी का कार्य है। विष्णु अपने रूप में आते बैठाते तो नहीं बैठते, किंतु इस रूप में देख करके मोहित हो गए, दोनों बैठ गए, बीच में खड़ी हो गई। मोहिनी जी अमृत का कलश लेकर, उन्होंने देवता असुरों को तरफ में देख करके तिरछी नजर से मुस्कुरा दिया। बस इसका मतलब क्या, मैं तुमको दूंगी। और देवताओं के तरफ में भ्रूभंगी के तरफ में देखा, तुम लोग शांत बैठे रहो, गड़बड़ी मत करो, उठो बैठो मत, चुपचाप बैठे रहो। गंभीर रूप से उनके तरफ में देखा, आरंभ कर दिया देवताओं की पंक्ति में देना। और बीच बीच में मोहिनी रूप से तिरछे नयनों से इनके तरफ में देकर के मुस्कुरा देती है। ये इसके मुस्कुराहट पर ही बिक गए और सोचे जी अब मिलेगा, अब मिलेगा। इधर में देते 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 बांटते बांटते देवताओं को बांट दिया। जबकि बांट दिया तो सूर्य और चंद्र के बीच में राहु बैठा था, राहु ने थोड़ा सा ले लिया, राहु केवल बैठा था, उसने झट लिया और मुख में देने के लिए चेष्टा की, एक बूंद मुख आया कि नहीं, इससे मैं चक्र सुदर्शन निकाला और अंतर्ध्यान हो गए, असुरों को मिला नहीं। अब तो देवता लोग बलवान होकर के उन्हें पराजित कर दिया, अमृत पान कर दिया। ये रूपक है, अब यहाँ पर इसको यहाँ पर लगाओ। एक तरफ में भक्तों की पंक्ति है, कौन से भक्त लोग, रसिक और भावुक तत्वज्ञ। और दूसरी तरफ में उस सभा में परीक्षित महाराज जी के सभा में कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी, ये अनाधिकारी भक्ति के ये लोग सब बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुक्ति को ही सर्वस्व मान रखा है। अब मोहिनी जो मुस्कुरा करके फिर गड़बड़ कर, मोहिनी ने इनके तरफ जो मुस्कुराया, मुस्कुरा करके मुक्ति को कुछ थोड़ा सा अपने हंसी से बिखेर दिया ने? उसी को ये कहते हैं सर्व वेदांत सार, समस्त वेदांत का सार जो ब्रह्म आत्मिक लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम, उसको दे दिया साई जी मुक्ति। उनके लिए हंस करके दे रही, हाँ हाँ यही ठीक है, सब वेदांतों का सार क्या है, साई जी मुक्ति, ये दे दिया हंस करके उनके तरफ बहुत दूर से। और भक्तों को क्या दिया, भक्तों का क्या दिया, हरि लीला कथा प्राप्त, भगवान की मधुर मधुर लीलाएं, ब्रज की लीलाएं, यशोदा जी कृष्ण को बांध रही है पर ब्रह्म को। यशोदा जी के आंगन में वो कौन है, गोपी बधु बीट, गोपी बधु बीट माने गोपियां कृष्ण को इशारे पर नचाती हैं, छाछ पर इतनी सी, उनके पीछे पीछे डोलते हैं, कभी हमारे पीछे मत आओ, हमारे पनघट पर मत आओ। और वो क्या करते हैं, बिना घेरे उनका काम नहीं चलेगा, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं की, रास की लीलाएं की, जिसमें समस्त प्रकार की लीलाएं जो कुछ है सब कुछ उसके अंदर में आ गया, जो एक ब्रह्मा की रात तक वो चली, ब्रह्मा रात पर उनमें गोपियों के पैर छुए, गोपियों के पैर दबाए, उनके चरणों में अलता लगाया, उनके नुपुर पहनाए, उनके श्वेत बिंदु को उन्होंने पूछा अपने इससे पीताम्बर से पूछा, कुछ लोभ से, इसमें लोभ था कुछ लेने के लिए, ये सब लीलाएं की। तो ये जो लीला कथाएं हैं ये किसको दिया, सत्तु अपने प्रेमी जो भक्त हैं उनको दिया। यही जो है भगवान की लीला कथाएं, यही अमृत है, यही ससुरों को दिया, यही सब वेदांतों का सार है। वो पहले उनको तो तरका दिया, उनको दे दिया, क्या दे दिया, उनको दूर कर दिया। और भक्तों कह रहे हैं अब समस्त वेदांत का सार जत ब्रह्म आत्मिक लक्षण, ब्रह्म माने वो जो बतलाया जो कृष्ण पर ब्रह्म और उनकी आत्मा अपि रमत,
आत्मा राम भोजी राम,
हाँ आत्मा राम माने कौन है, कृष्ण है आत्मा राम, किस लिए अपनी आत्मा से ही रमण करते हैं, आत्मा कौन है, इसलिए दोनों जो मिले और मिल करके जब एक हो जाते हैं, जो चैतन्य चैतामृत में बतलाया ना सो रमणी ना सो रमण, मैं वह रमण नहीं, कृष्ण रमण नहीं, मैं रमणी नहीं, दोनों मिलकर के एक है। हमने दूती के लिए प्रतीक्षा नहीं की, अपने नैनों के रास्ते ही वो परस्पर हम मिले। अब हम लोग दोनों बिछुड़े हैं, वो कैसे मिले हैं? जिस प्रकार से लाह होता है, लाख गला दिया जाए और उसमें कोई रंग मिला दिया जाए, और जब वो कठोर हो जाता है मिलने के बाद में, वो रंग कभी नहीं निकलता। ऐसे राधा कृष्ण दोनों एक है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति स्मार्ट एकात्मा नाव भोपुरा दे भेद, दोनों एक हो गए हैं। लीला विलास के लिए कभी ये दो हो जाए, यही श्रीमद् भागवत का मूल प्रयोजन है, उनकी चरणों की सेवा, उनके चरणों की सेवा, यही प्रेम है, यही प्रेम श्रीमद् भागवत का एकमात्र प्रयोजन है। सब वेदांत सारम जद ब्रह्मात्मिक लक्षणम वस्तु अद्वितीयम, वस्तु अद्वितीय, अद्वितीय के लिए कोई एक उदाहरण दिया था, याद है?
राजा के साथ उनका रानी भी है, उनका बेटा भी है, सब
है। राजा रानी सैन्य सब मिला करके राजा है। ये यहाँ यदि हम लोग के प्रेसिडेंट हैं, उनका मंत्रिमंडल रहेगा, प्रधानमंत्री रहेंगे, सेनाएं रहेंगी, सब कुछ रहेगा, राज्य रहेगा, तब तो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्र का पति। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्र नहीं है, सेनाएं नहीं है, मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कैसा राष्ट्रपति या कैसा राजा? इसलिए अद्वितीय, मैंने लाखों द्वितीय हैं, उनमें एक जो सबसे श्रेष्ठ है उसको कहते हैं अद्वितीय। इसलिए कृष्ण ऐसे अद्वितीय हैं, एक निर्विशेष तत्व नहीं है, इसलिए सभी मिलकर के तब उसमें सबसे, उनके न तो कोई बराबर है और न तो कोई बड़ा है, इसको अद्वितीय कहते हैं। तन्निष्ठम, तन्निष्ठम माने यहां पर अपि शब्द का प्रयोग किया, बोले देखो एक कैवल्य है ये मोक्ष वाला, और दूसरा कैवल्य है क्या? प्रेम रूपी कैवल्य। कहते ये क्यों ऐसा करते हैं? तो उसके लिए बतला रहे हैं, तारो धीरा भक्त्या ही एकांतिनुमम वाचंत माया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवन। भक्त लोग, धीर जो भक्त हैं, एकांतिक हैं, वो कृष्ण यदि कहते हैं कि तुमको मुक्ति देता हूं, कैवल्य मुक्ति देता हूं, तो वो कहते हैं नहीं, हमको नहीं चाहिए, न बाछन्ति, कभी भी नहीं देते हैं। और केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, केवल जो भक्ति के परायण हैं, कृष्ण प्रेम के परायण हैं, उनको कृष्ण के अतिरिक्त, राधा जी के अतिरिक्त, उनका प्रेम के अतिरिक्त और कुछ कृष्ण से नहीं देते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कृष्ण संबंध है, गोविंद जी अभिधेय है, और प्रयोजन क्या है? कृष्ण और राधा जी नहीं, उनके प्रति जो प्रेम है, यह प्रयोजन हम लोगों का है। इसलिए उनकी जो सेवा में जो प्रेम है, वही केवल मात्र एक प्रयोजन है। आज यहीं तक रखो, फिर कभी इसके बाद का हम बतलाएंगे। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तिते नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयः। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मयमाम चरणं जपं करीष बहुधा खलु का पुराणि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डबाहुले यज्ञा कदा रसनिधे दृशुभानुजाय ततके निकुञ्ज भवने भवनाङ्गन मार्जने वंशीकरण निपतितं खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसु यज्ञाकटाभातिविमोक्षितस्य संराधिका परशिरामि कदारति आसामहो चरणरेजुसामहं स्यान् वृन्दावने किमपि कुल्मकलसौषधीनां यद्दुस्तजं सजनयाच्य प्रसञ्च हित्वा भेजे मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिः वन्दे नन्दपर्जये श्रीणां पादुरेणुमभिक्ष्म जातां हरिकथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ सेवा कुंज के मध्य में विशेष करके रूप सनातन जी के चरणों में बैठकर आज हम लोग समस्त वेदांत का सार गायत्री का भाष्य महाभारत और ये सब का अर्थ निगम कल्प तरोर गलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम एवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूगा। निगम कल्प तरु निगम मैंने समस्त श्रुति उपनिषद वेद वेदांत जितने हैं ये एक वृक्ष है। वो कैसे हैं? कल्पतरु हैं। ये कल्पतरु हैं, ये सब कुछ देने वाले हैं और उस कल्पतरु का फल ये श्रीमद् भागवत। पेड़ की जड़ में से रस आता है किंतु उस रस वह मीठा रस नहीं होता। उसके डालियों को भी चूसो, पत्तियों को भी चूसो, किंतु उसमें वह रस नहीं आएगा। जब उसमें फूल या मंजरी होगी उसमें से एक सुंदर सब फूल फल निकलेंगे, हजारों फल, और वो रस जो उसकी जड़ से गया है अत्यंत मधुर होगा। परिपक्व हो जाने पर सूर्य की किरणों से तप कर जब अपने आप दाल में लगे हुए, अपने वृंत में लगे हुए जो फल हैं और वो जो पकेंगे उसमें रस होता है, इधर उधर में नहीं होता। तो ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी ये कल्पवृक्ष है, उसकी जड़ में, पत्तों में, डालियों में तो ये सब कुछ नहीं है। उसका परिपक्व और गुठली रेशे इत्यादि से रहित कोई भी है अंश नहीं, केवल रस ही रस है। और वो गोलोक वृंदावन से गिरा। कहां से गिरा? वो जो कृष्ण के चरणों को आश्रय करके जो प्रेम फल फल रहा है, राधा जी जिसको पका रही हैं, गोपियां पका रही हैं वृंदावन में, उनके हाथों से ये पका हुआ फल जगत के कल्याण के लिए वहां से छोड़ दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में रख लिया। ब्रह्मा जी के बाद में वो एक हाथ से नीचे हाथ था उनका, नारद जी का हाथ, उनके हाथों से व्यास जी के हाथ में, उनके हाथों से सुखदेव गोस्वामी के, उनके हाथों से सुख गोस्वामी, सौनक इत्यादि करते हुए ये आया माधवेंद्रपुरी पाद जी के पास। क्योंकि वे प्रेम कल्पतरु के ये ना धड़ हैं, वो उसमें से डालियां निकली उस प्रेम फल का। एक मोटी डाली हुई नित्यानंद प्रभु और दूसरे हुए अद्वैत डाली, ये मोटी मोटी डाली, और उससे उस डालियों से और भी सुंदर सुंदर डालियां निकली, स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी और जो उस समय में महाप्रभु के जो परिकर थे वो सब निकले। उन डालियों से जो डालियां निकली जिसको टहनी कहते हैं, वो रूप मंजरी रूप गोस्वामी, ये लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी और सब ये हुए। उस प्रेम को दूसरा फल नहीं दे सकता, यही ब्रजवासी लोग ही दे सकते हैं, यही लोग ब्रजवासी हैं। तो इन लोगों को मिला, इन लोगों से जीव गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी ने लिया। इस तरह से धीरे 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 कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि ने लिया। उन्होंने अपने प्रिय बीआरएल नरोत्तम ठाकुर श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास जी, इन्होंने नरोत्तम ठाकुर को दिया। बड़ी सुंदर उससे और भी उसमें रस मिलाकर, सुख पक्षी अपने चंचु से उसमें और रस मिलाकर, उसमें और रस मिला दिया, और भी मधुर से मधुर होता चला जा रहा है। जितना ही प्रसाद से प्रसाद, महाप्रसाद, महा 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 महाप्रसाद, और भी महा महा प्रसाद होता गया। भक्तों का उसमें जो मिठास था मुख के अंदर में, वो उसमें पड़ता गया और भी मधुर होता गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तक आते आते उसमें न जाने कितना और भी माधुर्य मिठास और आकर्षण बढ़ गया। उससे जो सुगंध निकली वो विश्व को आमोदित कर दिया, विश्वभर इसे आमोदित हो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के स्पर्श से उसमें जो सुगंध आई और उन्होंने उसको विश्व में पहुंचाया, सब लोग जानने लगे हाँ ये मधुर फल कैसा है, नहीं तो लोग नहीं जानते। तत्पश्चात श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती आए और माली बन करके इन्होंने विश्व में देना आरंभ कर दिया। अभी तक तो भारतवर्ष में ही था, अब इन लोगों ने क्या किया, सारे विश्व में अनाधिकारियों को उसमें तो छिलका इत्यादि तो था नहीं, उन लोगों ने देखा अधिकार उनको उनके दर्शन से पीछे प्राप्त होगा, बहुत कम इसके अधिकारी हैं। इस तरह से आज विश्व में ये श्रीमद्भागवत प्रचारित हुआ, फूटा फटा नहीं, रसमय फल वहीं से आप करके हाथों इस जगत में पहुंचा, सुरक्षित रूप में पहुंचा। इसी को कहते हैं गुरु परंपरा धारा। लोग भजन करते हैं, गुरु परंपरा को ग्रहण नहीं करेंगे उनको भागवत से स्पर्श भी नहीं होगा, दर्शन भी नहीं होगा। इसलिए गुरु परंपरा के हम लोग ऋणी हैं। जिससे यार यदि एक आदमी का लिंक भी छूट जाएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इस जगत में नहीं आएगा। इसलिए यह लिंक ठीक रखना है, इसलिए हम लोग इस लिंक में रहेंगे सब समय, जैसे कि ये हमको भागवत का रस रसास्वादन हो सके। ये भी दो तरह से आया, दो परंपराओं से, एक तो जो अभी मैंने कहा और दूसरा आया कैसे, संकर्षण से मूल एक, वो भागवत कथा के खजाना है, उनसे नर नारायण को हुआ और उनके से कौन ऋषि याद है, संख्यान ऋषि से वो आया पराशर, पराशर से मैत्रेय और वो विदुर इत्यादि का संवाद जो सुनता है ना वहां पर हुआ। उस तरह से धारा से इस जगत में आकर के सुत गोस्वामी के सामने में वो दोनों धाराएं एक में मिल गई, निकली थी दोनों धाराएं एक थी कहां, संकर्षण तक, और वहीं से दो धारा हो गई, एक ब्रह्मा इत्यादि के माध्यम से इधर से आई और एक संख्यान से आई। सुत गोस्वामी के समय में दोनों मिलकर के कौन रोमहर्षण उग्र सवार, उसी समय में दोनों धाराएं मिली और इस जगत में प्रवाहित हुई। श्रीमद् भागवत का मूल प्रयोजन क्या है, जब तक कृष्ण है जगत में मधुर मधुर लीला कथाओं लीलाओं को कर रहे हैं, उसमें पेड़ तक भी पौधे तक भी लताएं तक भी इन सबको उन्होंने प्रेम दिया। कृष्ण का अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो उनको प्रेम दे सके। यहां एक आदमी का नाम उई होने पर भी उनको भी समझ लेना किनका, मूल रूप में वही प्रेम देने वाली है। कृष्ण अपने जातीय प्रेम देंगे उसे हम लोगों का कोई भी लाभ नहीं। राधा जी का नाम यहां पर उई की होने पर भी इस प्रेम के मूल दात्री वही है श्रीमती राधिका जी। बलदेव जी अपने रूप में अपने बलदेव स्वरूप में नहीं दे सकते क्योंकि वो भ्रमर गीता इत्यादि है, रास लीलाएं हैं और सब जो लीलाएं हैं शंकरसन जी सब अनंगरी अनंग मंजरी के रूप में बोले। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अनंग मंजरी को गुरु मनाया, शिक्षा गुरु के रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। भागवत यह राधा कृष्ण का स्वरूप है, पहले ही जहां से आरंभ हुआ वहीं से देखिए, पहले इस श्लोक से उन्होंने दिया है। विशेष करके व्यास जी ने समस्त शास्त्रों के बनाने पर भी उनको तृप्ति नहीं होती है, नारद जी वहां पर उपस्थित होते हैं। नारद जी की क्या जरूरत थी, वो तो स्वयं नारायण है ये गुरु परंपरा को मानने के लिए। यदि ऐसा नहीं होता तो गुरु परंपरा की मान्यता नहीं होती। इसलिए शिष्य चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कोई भी हो, चैतन्य महाप्रभु हो, इस नरलीला में गुरु जरूर ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो गुरु परंपरा की धारा विच्छेद हो जाएगी, कोई भी गुरु परंपरा को मानेगा नहीं। असल में गुरु तो वही है, कृष्ण है, महाप्रभु जी हैं, शंकरसन है, यही गुरु हैं। किंतु तभी जगत में शिक्षा देते हैं, अपने आप स्वयं शिष्य बनकर। इसलिए व्यास जी ने नारद जी से पूछा सम्यक प्रास्थान में,